सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत महाराष्ट्र के इस 47वें संत समागम के दूसरे दिन भी पहले दिन यानी कि कल की तरह ही भरपूर आनंद की महसूसियत हो रही है। जहाँ पर ऐसा वातावरण जो प्रेम श्रद्धा भक्ति से भरा हुआ है, जो कि आपके हृदयों में है, जहाँ पर इन घड़ियों को, इस समय को ऐसी सुंदर भावनाओं से, ऐसी लगन से युक्त होकर बिताया जा रहा है, तो एक पंडाल की बात नहीं, इन मैदानों की बात नहीं, ये महक सारे संसार तक पहुंचाने की प्रेरणाएं हमें यहाँ पर मिल रही हैं। क्योंकि ये संसार जिस प्रकार से दूषित स्थिति में होता जा रहा है, जहाँ पर भावनाओं में गिरावट है, जहाँ पर व्यवहार में कड़वाहट है, जिसके कारण आज हम चारों तरफ वातावरण खिंचाव वाला देखते हैं, जिसके कारण कोई राहत महसूस नहीं करता है, तो यहाँ पर आप सभी मिलजुल कर उस वातावरण को जन्म दे रहे हैं जो सारे संसार के लिए शुभ है। और तमाम संतों, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने डाउन द एजेस, उन्होंने यही चाहा कि हर इंसान की भावना ऐसी सुंदर बने, मानवता इंसानियत की डगर पर चले, खुदगर्जियों से ऊपर उठे, वैर, ईर्ष्या, नफरत, घृणा की आग में ना जले ना जलाए। ये तमाम संतों महापुरुषों ने यही चाहा और यही उनकी शिक्षाएं रही हैं। यही चाहा उन्होंने कि इस धरती पे जन्म लेकर इस धरती को और सुंदर बनाना है, इस धरती को चार चांद लगाने हैं। लेकिन इंसान जब भटक जाता है, जब अपने इंसानी वजूद का भी एहसास नहीं करता है, उसकी सोच में खोट आ जाती है, जब अज्ञानता के अंधकार में वो विचरण करता है, फिर वो ऐसी संसार को देन देता है कि ये धरती भी कलंकित हो जाती है। तो आज यहाँ पर कल की तरह हमने जो भावनाएं श्रवण की गीत कविता व्याख्यान के रूप में, वो सब इसी और ही हमारा ध्यान अग्रसर कर रहे थे कि हम भी विचारें सोचें कि हमने कौन सी डगर अपनाई है, किस रास्ते को हमने चुना है, किस रास्ते पे हम चल रहे हैं। हमारी सोच में एक स्वच्छता है या फिर विष यानि कि जहर के रूप में हमारे ख्याल और हमारी सोच है, और उसी के अंतर्गत हमारे औरों के साथ व्यवहार हैं। तो ये हमने अपने आप का मूल्यांकन करना है, अपने आप को नापना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम किस सांचे में ढल चुके हैं, क्या हमें इसी सांचे में ढले रहना है, या फिर हमने उस सांचे में ढलना है जिसके कारण एक इंसान भगवान कहलाने लग पड़ता है, एक देवता का रूप बन जाता है। तो ये हमने मूल्यांकन करना है, अपने ही एनालिसिस करने हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो वक्त अभी हमारे हाथ में है, हम संभल सकते हैं, वरना इससे पहले कि बहुत देर हो जाए फिर कुछ हम कर ना पाएंगे। इसलिए अभी वो वक्त है, हम इस बोझ को उतार दें, इस बोझ को, इस बर्डन को हम साथ ना लेके चलें, इससे पहले कि हमारी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएं, उससे पहले हम तमाम ऐसी विपरीत भावनाओं को तज दें और सुरखरू होकर एक मुख उजला करके संसार से हम रुखसत हों। जैसे वो कहावत है, लाइक देयर इज़ अ सेइंग दैट लेट thy वॉइसेस डाई बिफोर दी, कि अपनी जो वॉइसेस हैं अपने संसार से जाने से पहले, हमेशा के लिए खामोशी में जाने से पहले, तुम्हारी शारीरिक मौत होने से पहले उन वॉइसेस का अंत हो जाए, उसको उसका अंत कर दो और सुरखरू होकर इस संसार से जाओ, एक खुदगर्जियों से ऊपर उठो। जैसे आज भी आपने सुना किस कदर महापुरुष सुंदर गीत भी बोल रहे थे, भजन कविताएं भी बोल रहे थे कि ये धरती का रूप सुंदर होगा अगर हम खुदगर्जियों से ऊपर उठेंगे। वी आर सीइंग mankind लिविंग इन सेल्फिशनेस, बट देर आर पीपल हु आर लिविंग फॉर अदर्स, एंड एज यू जस्ट सॉ दैट वी हैव टीम ऑफ डेडिकेटेड डॉक्टर्स। इवन इन नवंबर 2013 वी हैड सच डेडिकेटेड पीपल फ्रॉम स्पेशली कैनेडा, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, एंड वंस अगेन जस्ट 2 months हैव गॉन बाय, एग्जैक्टली 2 months आफ्टर दैट वर्ल्ड इवेंट विच वी हेल्ड इन दिल्ली। वंस अगेन वी आर लैक्स ऑफ डेडिकेटेड saints who are full of devotion, who have this feeling all the time in their hearts that we are part of mankind and mankind belongs to us, and we have one common universal father. We name it as God or Allah or Ram or Akal Purakh or Vaheguru. So similarly, the representation which we just saw or we experienced since yesterday in these grounds, where these dedicated doctors who, along with Dr. Hari Simran Khalsa ji, to whom you just listened the words of wisdom, he talked about shedding the animosity, the hatred, the feeling of hatred. I just remember and I always quote the wordings of Martin Luther King Jr., who said, I am not remembering exact words, but what he said was that I will not allow anybody to belittle my soul by making me hate him. That means there's no place of hatred or animosity in my heart, and there shouldn't be in anybody's heart. We are seeing so much diversity. We are a part of that diversity. So many languages, so many cultures, so many modes of dresses and diets, and I often say that the creation of the Lord God Almighty is in the form of diversity, not in a form of uniformity. The moon is not like the sun, and sun is not like the earth. And even on the planet Earth, we have mountains, we have oceans, we have seas, we have rivers, we have lakes, we have deserts, we have greenery, we have all the colors. And then we come to people, or if we see the species, so many animals, we see. We see the insects, we see the birds. One is not like the other. Similarly, when we come to mankind, as I said, that people of different languages, of different faiths and different beliefs and different cultures and languages. So diversity what we are seeing all around. But what is foremost and important is unity in this diversity, to appreciate the differences and to come to that level where we establish harmony and we live in harmony, and may there be peaceful coexistence, not fighting each other. Our lifespan is not eternal. A limited time God has given us to live in on this planet Earth as a human being. So we have to make it fruitful. The purpose of life is a life of purpose. We have to have that purpose to fulfill the desires which saints and sages always had. That's what has to be fulfilled. And we have to make our life worthwhile, and worthwhile for others to be proved, and make every bit more beautiful than we found it. As a saying goes, that there are people who look for beautiful places, and there are others who make the places beautiful. So we have to make the place beautiful, each moment beautiful. And we cannot beautify it by hatred. That's just devastation. We have seen so many wars, so much violence we have seen, the fanaticism. People are so fanatic about religions or about caste, creed, color of the skin, etc. They just do not realize that they are not doing God's work. If there is fanaticism on the basis of religion, that's not what was taught by the saints and prophets. They all talked about compassion, love, tolerance. We have to be tolerant. We have to be full of compassion. That's what is expected of us. तो कहने का भाव क्या है कि संतों महात्माओं ने, गुरु पीर पैगंबरों ने तो यही शिक्षाएं दी थी कि हम इस प्रकार से सारे ही इंसानों के रूप में पैदा हुए हैं और सारे ही अपने हैं, ये हमारी दृष्टि हो जाए। एक परमात्मा कांश आत्मा के रूप में हर घट में बसता है और हम यही दृष्टि से युक्त होकर हम देखें और अपनेपन का भाव जो है उसको मजबूत करें। बेगानेपन का भाव ना रहे हमारा, ये ना हमारी दृष्टि हो कि ये एशियन नहीं है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन से है या फिर ये कहीं पर किसी और सिविलाइजेशन से है। हमारी दृष्टि यही रहे कि ये मानव है, ये ह्यूमन बीइंग है, एक परमात्मा ने इसको भी रचा है, मुझे भी रचा है, इसे भी पांच तत्व का पुतला बनाया है, मैं भी पांच तत्व का पुतला। तो इस तरह से एक अपनेपन का भाव जो है वो हमारे मन में मजबूत होता चला जाए। इसीलिए संतों, भक्तों, महापुरुषों के लिए सारा जहान अपना था, सारा संसार अपना था। ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई, कि कोई पराया नहीं, कोई बेगाना नहीं है, सारे अपने हैं। तो अपनेपन का भाव ये हमारे मनों में मजबूत हो, तभी हम मिलवर्तन की भी उम्मीद कर सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं, तभी हार्मनी के साथ हम जी सकते हैं। तो यही तो रिक्वायर्ड है, यही तो एक महापुरुषों की चाहत है, यही तो उन्होंने सदैव से चाहा है कि मानव इंसान इस प्रकार से जिए, इस जीवन को इस प्रकार से, इस जीवन के सफ़र को तय करे कि वाकई ही इंसान जो हैं ये तफरके करने के लिए नहीं है, ये प्यार देना है इनको। एक सेल्फलेसनेस के भाव से युक्त होकर, इनमें अपना ही अक्स देख के, अपनी ही रिफ्लेक्शन इनमें देखकर, हमने ये प्यार देना है, इनको अपना मानकर, इनको अपना जानकर। जैसे अभी भी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स जिन्होंने ये महान देन दी, जहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर उस प्रकार की फैसिलिटीज या सहूलत ना भी होने के कारण, उसके बावजूद किस प्रकार से यही मानकर चल रहे हैं कि हमने सेवा करनी है मैनकाइंड की, इस सारी मानव जाति की सेवा करनी है। और वाकई ही जो ऐसे जज्बे रखते हैं, जैसे दास ने कहा कि आप सभी भी सारे संसार को ऐसी ही देन दे रहे हैं, जहाँ पर यही मानते हैं कि हम किसी पराए के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। जैसे पिछली गर्मियों में उत्तराखंड में जो ऐसे एक बरसात के पानी का और क्लाउड बर्स इत्यादि हुए, कितना नुकसान हुआ, और मिशन के डिफरेंट ब्रांचेस और उनके सेवा दल ने जाकर जो वहाँ पर योगदान दिया इन स्पाइट ऑफ चैलेंजिंग टेरेन्स एंड कंडीशंस, स्टिल द वॉलंटियर्स वेंट देयर टू सर्व हु वर सफरिंग। तो उसके बाद मसूरी में दास था, और वहाँ पर ही दास ने ये बात कही कि मिशन ने अगर ये योगदान दिए हैं तो मिशन ने किसी पे एहसान नहीं किया है, भला कोई अपने परिवार के ऊपर भी एहसान करता है? ये सारी मानव जाति ये हमारे ही परिवार का अंग है। एवरीबडी बिलोंग्स टू द सेम फैमिली आई बिलोंग टू। एज हैज़ बीन सेड दैट चैरिटी इज़ नॉट टेकिंग पिटी ऑन समबडी, बट चैरिटी इज ऑल अबाउट लव। तो इस प्रकार से भक्त महापुरुष संतजन वो ऐसे ही योगदान देते आ रहे हैं, और जो भी ऐसे योगदान देता है वो धरती के लिए वरदान होता है, उसका संसार में विचरण करना मुबारक होता है। जो वाकई औरों के लिए जीता है, वो गीतकार की लाइन लिखी हुई और सारे ही अक्सर जुबान पे है, कई डेकेड्स पहले जो लिखी गई और गाते भी हैं सारे, कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए, कि अपने लिए जीने को जी लेते हैं इंसान। जहाँ से दास ने बात आरंभ की थी, सेल्फिशनेस खुदगर्जी, जस्ट लिमिटिंग टू वन सेल्फ, वो केवल अपने लिए जीते हैं, उनके लिए कोई और मायने नहीं रखता है। समाज और देश और विश्व की बात तो दूर छोड़ो, एक फैमिली, ब्लड रिलेशंस, एक ही छत के नीचे रहकर भी वो भी लोग देखे हैं जो केवल और केवल अपने लिए सोचते हैं। चाहे मेरा भाई है, चाहे बहन है, चाहे मेरा पिता है, चाहे माता है, जिन्होंने कितनी सैक्रिफाइसेस करके मुझे इस मुकाम तक ला खड़ा किया है, वहाँ पर भी मैं सोचता हूँ केवल और केवल अपने लिए, केवल अपनी सहूलत, केवल अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, चाहे विपरीत असर पड़े बाकियों के ऊपर। केवल और केवल खुदगर्जी के साथ जीने वाले एक ही घर में हमें देखने को मिलते हैं। समाज की छोड़ो बात, सोसाइटी की बात छोड़ो, और विश्व की बात तो कोसों दूर है। तो एक घर में ही इतनी खुदगर्जियां प्रबल हो गई कि भूल जाता है इंसान कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से मैं अपने आप को मैंने किस सांचे में ढाल लिया है। वही शेर कई दफ़ा दास ने दोहराया है कि जिस बूढ़ी माँ को तुमने घर की दहलीज से बाहर निकाला है, उसी की दुआएं हैं कि तुम्हारे हाथ में निवाला है। कि एक माँ को जिसने पाला पोसा कितने दुख दर्द सहे, कितनी कठिनाइयों का सामना किया और तूने उसकी ये कदर की और अपनी कन्वीनियंस को देखने के लिए उसको घर की दहलीज से बाहर निकाल दिया। जैसे आज भी आपने श्रवण किया कि कैसे एक बेटा माँ को कहता है प्रॉपर्टी सारी बेच दो और मेरे साथ अब्रॉड चलो, और एयरपोर्ट पे माँ को बिठा लिया और माँ 4 घंटे इंतज़ार करती रही बेटा आए मुझे लेने के लिए, और पता तब चला कि बेटा तो 1 घंटा माँ को छोड़ने के बाद फ्लाइट लेके बाहर ही चला गया था। उसका उद्देश्य क्या था कि माँ प्रॉपर्टी बेच दे, उसकी दौलत मेरे हिस्से में आ जाए, माँ यहाँ सड़ती रहे सड़े। तो ये है आज इंसान की खुदगर्जियाँ, ये है इंसान के आज लोभ, ऐसे लालच जैसे ये दौलतें साथ लेके जाएंगे। यहाँ तो कोई एक सुई भी साथ नहीं लेके गया है, और इंसान ऐसी कमाइयाँ कर रहा है जो कि इसके लिए अपयश और डूबने का कारण है। आगे भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस जहान और उस दोनों जहान में केवल और केवल रुसवाई ऐसे इंसानों के हिस्से में आती है जो इस प्रकार से विचरण करते हैं। जैसे संत तुकाराम जी इत्यादि महापुरुष महाराष्ट्र के, उन्होंने भी यही कहा कि विषयों से सुख घेता हर घड़ी चिंता, पुनः ना ही जन्म रे आता। के विषयों विकारों में पड़े हुए इंसान किस प्रकार से नहीं जानते कि अमोलक जन्म बार बार हाथ नहीं आता है, और ये अपने अमोलक जन्म को किस तरह से नष्ट कर रहे हैं, किस तरह से पतन कर रहे हैं, किस तरह से गिरावट में आ रहे हैं। तो इन समागमों का अभिप्राय, इंसान का म्यार, इंसान की सोच, इंसान के ख्यालों को वो बुलंदी देना, वो ऊंचाई देना जिसके कारण इंसान इंसान कहलाने का हकदार बन जाए, और इस प्रकार से इंसान का रुतबा बुलंद हो जाए, ये एक अभिप्राय है। यही संतों महात्माओं ने ये प्रेरणाएं दी हैं, ये इंसानों को ये मोटिवेट किया है, इस तरफ ध्यान दिलाया है, आईना सामने रखा है, मिरर सामने रखा है, एक सत्य रूपी, एक सच्चाई रूपी जिसमें हर इंसान का भला निहित है, वो आईना सामने रखा है। वो वाणी उनकी यही पुकारती है, यही वो संदेश देते आ रहे हैं कि इंसानों, तुम अपने से ज़्यादा दूसरों का सम्मान करो, अपने से ज़्यादा महत्व अपने आप को देने के बजाय दूसरों के महत्व की पहचान करो, कदर करो। दूसरा कोई तुम्हारे साथ अच्छाई से पेश आता है या एहसान तुम्हारे ऊपर करता है, तुम्हें उसे एहसान मानो और उसको ताउम्र याद रखो। और तुम किसी पे अगर एहसान करते हो तो जैसे कहते हैं कि नेकी कर और कुएं में डाल, यानी कि नेकी कर और कुएं में डाल, यानी कि उसका तू उसको जता नहीं, उसका अभिमान मत कर। और तेरे ऊपर अगर कोई भलाई तेरे साथ हुई है तो इतना नाशुकरा ना बन जाना कि भूल ही जाए, एक शुक्र करना उसका, याद रखने, नेवर फॉरगेट व्हेन यू गेट एंड नेवर रिमेंबर व्हेन यू गिव। यानी कि एहसान करके जता नहीं, और तेरे ऊपर अगर होता है तो उसको कभी भूल नहीं, इस तरह से तेरी ये अवस्था हो। तो कितने कितने जीवन के आयाम हैं, जितने कितने ही जीवन के एस्पेक्ट्स हैं, कितने ही जीवन के पहलू हैं जो महापुरुष संत जन ने चाहा कि हर वो सुंदर पहलू इंसान के जीवन का हिस्सा बने। कल भी आपने सुना कि इंसान जहाँ पर खुदगर्ज है, जहाँ पर वैर ईर्ष्या नफ़रत की आग में जलता है, कहीं पर इग्नोरेंस के साथ जीता है, अज्ञानता के अंधकार में जीता है, भ्रम और भ्रांतियों में जीता है, वहाँ पर वो दूसरों को नीचा करके देखता है, अपने आप को ऊंचा करके देखता है, एक झूठा अभिमान करता है, अहंकार करता है, एगोइस्ट बनता है। और महापुरुषों ने ये आदेश दिए कि हमने अपने आप को नीचा मानना है, औरों को ऊंचा मानना है, हमेशा हमने सोचना है कि इसमें अच्छाई है, हम में तो लाखों कमियां हैं। वरना तो संसार में यही कुछ हो रहा है कि इंसान इसी दौड़ में लगे रहते हैं कि दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए। जैसे वो भी उदाहरण दास ने कई दफ़ा दी हैं कि एक पति और पत्नी जा रहे थे और पत्नी कहती है कि गाड़ी चलाते चले जा रहे हो तो ज़रा बाईं ओर देख लो, अपने रिश्तेदारों के दर्शन कर लो। तो उस पति ने जब बाईं तरफ नज़र घुमाई तो सड़क के किनारे देखा कि जानवर पशु थे वहाँ पर, कोई सुअर, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई भैंस। तो देख लिया उसने पति ने, तो पत्नी कहती कर लिए दर्शन अपने रिश्तेदारों के? तो पति कहता है कर लिए है मैंने दर्शन अपने रिश्तेदारों के, पर वो मेरे ससुराल की तरफ से हैं वो रिश्तेदार। यानी कि पत्नी पति को नीचा दिखा रही है और पति पत्नी को नीचा दिखा रहा है। एक किसी राइटर ने बुक लिखी और उसने पहले पेज पे लिखा, आई डेडिकेट दिस बुक टू माई वाइफ, विदाउट हूज एब्सेंस दिस वॉन्ट हैव बीन पॉसिबल। यानी कि वहाँ पर भी वो लिहाज नहीं कर रहा है कि मेरी पत्नी का योगदान है, गैर हाजिर रही इसीलिए मैं ये कर पाया हूँ। तो इस प्रकार से जाति के लिहाज से देखें, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऊंची जात का हूँ, तू नीची जात का है, इस प्रकार से दूसरे को नीचाई दिखाते रहते हैं, अपने आप को ऊंचा मानते रहते हैं। तो ये महापुरुष संतों ने कहा है कि अभिमान नहीं करना है, और जो अभिमान नहीं करते वही ऊंचे होते हैं। जो अपने आप को हम्बल रखते हैं उनको कोई नीचा कर ही नहीं सकता है। वो भी कहावत कई दफ़ा दास ने दोहराई, दोज हु स्लीप ऑन द फ्लोर डू नॉट फॉल फ्रॉम द बेड्स। यानी कि जो पहले ही अपने आप को कह रहा है कि मेरे में कोई गुण नहीं, जो अपने आप को पहले ही हम्बल किए हुए हैं, उसके रुतबे को कौन नीचा कर सकता है? उसको कोई नीचा नहीं कर सकता है। और वाकई ही ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस के कारण ही संतों, महात्माओं, भक्तों को ऊंचाई प्राप्त हुई। वो अगर आज ऊंची दृष्टि से हम उनको देखते हैं, अगर श्रद्धा आस्था रखते हैं उनके प्रति, तो उसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने अपने आप को विनम्र बनाया, उन्होंने अहंकार नहीं किया। तो इस प्रकार से ये एक पहलू है जिनको हमने जीवन में एक अपनाना है, जीवन के हर पहलू को सुंदर बनाना है। कोई भी हमारे जीवन में ऐसी विपरीत भावना हमारे मन में ना रह जाए, कोई व्यवहारिक रूप हमारा ऐसा कड़वा या फिर पीड़ा देने वाला ना रह जाए, हर पहलू हमारा सजा समरा हो और हमने अपने जीवन को एक ऐसे मुकम्मल रूप में, एक ऐसी सुरूपता इसको देते चले जाएं, एक ऐसी सजावट इसकी करते चले जाएं, उन दिव्य गुणों के द्वारा, ऐसी वर्चुस के द्वारा, ऐसे क्वालिटीज़ के द्वारा जिनके द्वारा पहले भी यश मिला, जिसने भी इनको धारण किया, और हम भी उसी रेखा पे चलकर, उसी रास्ते पे चलकर, वही अनुकरण अनुसरण करते हुए हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। यही एक शुभकामना, यही अरदास, यही प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय काफ़ी आगे बढ़ गया है। जो निश्चित किया गया था समय, हम तकरीबन वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो दास और अधिक वाणी का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और फिर से खुशी जाहिर करेगा जो ये तमाम घड़ियाँ बिताकर प्राप्त हो रही हैं, आपके दर्शन करके जो प्राप्त हो रही है खुशी, और ऐसे वातावरण को जो स्थापित किया जा रहा है, इसमें समय गुजार कर बहुत खुशी हासिल हो रही है। आज सुबह भी सेवा दल के जवानों ने रैली के रूप में किस कदर वही पहलू पेश किया, एक सेवा वाला पहलू, एक सेल्फलेस सर्विस वाला पहलू, एक भाईचारे वाला पहलू, जिसके लिए मिशन स्टैंड करता है, जिसके लिए तमाम संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर, जिसके लिए अपना जीवन को लगाते चले गए। तो आज भी इसी तरह का वातावरण ये यहाँ पर इन मैदानों में, खारगढ़ के इन मैदानों में ये स्थापित हुआ है। दातार कृपा करे कि यही वातावरण दुनिया के हर हिस्से में स्थापित हो, ताकि इंसान इंसानियत की डगर पर चलें, मानवीय मूल्यों से युक्त रहें, प्यार की गंगा बहाते चले जाएं, औरों को अपनाते चले जाएं, और शांतिपूर्वक इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। सत्संग जी धन्यवाद।